नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के 1000 से अधिक कर्मियों को वीरता और सेवा पदक के लिए चुना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूलने की अनुमति दी। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में ग्रीष्मकालीन अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। उद्यान जनता के लिए शुक्रवार से खोला जाएगा और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका प्रादेशिक भाषा में प्रसारण करेगा। दूरदर्शन के सभी चैनल इसे हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित करेंगे। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषा में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को संबोधित करेंगे। ये संबोधन शाम 5:10 से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ चैनल और एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर प्रसारित होगा। देश कल अपना 78वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार कार्यों से जुड़े 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक के लिए चुना गया है। तेलंगाना पुलिस के हेड कांस्टेबल चादुबू यादैया को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 213 कर्मियों का चयन वीरता पदक के लिए किया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए 94 राष्ट्रपति पदक दिए जा रहे हैं, जिनमें 75 पुलिस को, 8 अग्निशमन सेवा को, 8 नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्ड को और 3 सुधार कार्यों के लिए हैं। सराहनीय सेवा के पदक के लिए 729 कर्मियों को चुना गया है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जबकि सराहनीय सेवा का पदक समर्पण के साथ कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। एक रिपोर्ट।
विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए लोगों में देश भर से पंचायतों की महिला प्रतिनिधि और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल हैं, जो देश में विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आमंत्रित पदाधिकारी मंत्रालय की कई योजनाओं से संबंधित हैं, जबकि पंचायती राज मंत्रालय के सभी आमंत्रित व्यक्ति राज्यों की पंचायतों से हैं। विशेष अतिथियों को देश को सशक्त बनाने की दिशा में उनके प्रयासों को सराहने के साथ साथ ऐतिहासिक राष्ट्रीय उत्सव का हिस्सा बनने और जीवन एक यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया है। रईस उद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस और माय भारत के स्वयंसेवकों से बातचीत की। इन स्वयंसेवकों को लाल किले पर आयोजित समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश का भविष्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि तिरंगा करोड़ों भारतवासियों की एकता, निष्ठा और गौरव के प्रतीक के रूप में सदैव लहराता रहेगा। गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने आवास पर तिरंगा फहराकर उन वीरों का स्मरण किया जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ एक सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया है और नागरिकों से पूरे उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की है।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
सिक्किम में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 758 सीमा सड़क कार्यबल ने स्वस्तिक परियोजना के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया है। उत्तर और पूर्वी सिक्किम क्षेत्र में जवाहर नेहरू मार्ग पर 300 पौधे लगाए गए। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत की अर्पिता दत्ता और उनकी मंडली ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागर विमानन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे भी उपस्थित थे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इसे 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापित और पलायन कर चुके लोगों की याद में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन असंख्य लोगों को याद किया है जो विभाजन की त्रासदी से पीड़ित और प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि आज उन सभी लोगों के साहस को सम्मानित करने का दिन है। सरकार ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और विस्थापित हुए लोगों के सम्मान में वर्ष 2021 में 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का फैसला किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ आज विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर लखनऊ में मौन मार्च निकाला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इतिहास के काले अध्यायों से पर्दा उठाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र प्रथम की भावना हमारे जीवन का संकल्प बन जाएगी तो भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण पर्ण है और वह है नागरिक कर्तव्य। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ उसे कार्य करना होगा। राष्ट्र प्रथम का यह भाव जब हमारे जीवन का संकल्प बनेगा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया जिसमें विभाजन के समय की त्रासदी को दर्शाया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in और हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है, 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट किया है कि राज्य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं। 1 अप्रैल 2005 से पहले के खनिज अधिकारों पर यह लागू नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने 25 जुलाई को यह आदेश दिया था कि राज्यों के पास शक्ति है कि वे खनिज अधिकारों पर कर लगा सकें। खान और खनिज विनियमन तथा विकास अधिनियम 1957 राज्यों के अधिकारों को सीमित नहीं करता। सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 23 अगस्त तक के लिए टाल दी है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उस समय वे कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में रहने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार को निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को इलाके के असली निवासियों की पहचान करने का भी आदेश दिया। पीठ ने अवैध आप्रवासन को राज्य तथा केंद्र दोनों सरकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। पंचायतों में महिलाओं के नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में देशभर की 160 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हिस्सा ले रही हैं। पुद्दुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर पंचायत के विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया और प्रतिनिधियों को उनके समाधान भी बताए। पूर्व उपराज्यपाल ने कहा कि पंचायत के सरपंचों को अपनी जिम्मेदारी प्रमुखता से निभानी चाहिए, क्योंकि 2/3 आबादी ग्रामीण भारत में रहती है।
2/3 भारत तो गांव में बसता है, इसलिए जब गांव में बसने वाले युवा, महिला, पुरुष सब कुछ अपने साधनों को संभाल के जिम्मेदारी से चलाएगा, भारतवर्ष बदल जाएगा। आज नहीं, 5 साल में बदल जाएगा।
पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कार्यशाला के दौरान प्राप्त हुए अपने अनुभव साझा किए। इसी क्रम में उत्तराखंड से एक ग्राम प्रधान तबस्सुम इमरान ने कहा कि उन्हें कार्यशाला से अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
मैंने अपनी पंचायत में महिलाओं से लेके किशोरियों से लेके सभी जितने भी मेरे यहाँ वर्क है, सभी के लिए अच्छा कार्य करने की कोशिश की है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज इस वर्कशॉप में आने का हमें मौका दिया। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा और अपनी पंचायतों में अधिक अच्छा कार्य करने का कार्य करेंगे।
मध्य प्रदेश से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि मंजू चौकसे ने कहा कि वह अपने गांव में उसी तरह से कार्य कर रही हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए करते हैं।
मुझे इस अंबेडकर भवन में आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। पूरे देश भर की महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत इस कार्यशाला का आयोजन हुआ है और सरपंच महिला अपने गांव की प्रधानमंत्री है और वो चाहे उसके हाथ में इस गांव का उन्नति विकास है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में ग्रीष्मकालीन अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। आम जनता के लिए इसे शुक्रवार से खोला जाएगा और लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
इस उद्यान को देखने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी उद्यान देखने के लिए बुलाया गया है। बच्चों को अमृत उद्यान की भावना से जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों को बटन बैज दिए जाएंगे। प्रांगण में एक नई आकर्षक साउंड पाइप प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे बच्चों को एक नया अनुभव प्राप्त होगा। यहां आने वाले आगंतुकों को अद्वितीय और पर्यावरण अनुकूल बीज पत्र स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जाएंगे। अमृत उद्यान देखने के लिए टिकट राष्ट्रपति की वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं और यहां आने जाने वाले लोगों की सहायता के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से निशुल्क शटल बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि वे सितंबर में पद से इस्तीफा दे देंगे। 67 वर्षीय श्री किशिदा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में दोबारा चुनाव न लड़ने के निर्णय की घोषणा की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पेनिसिया बायोटेक ने भारत में डेंगू वैक्सीन के लिए पहले चरण फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के 1000 से अधिक कर्मियों को वीरता और सेवा पदक के लिए चुना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूलने की अनुमति दी। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में ग्रीष्मकालीन अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। उद्यान जनता के लिए शुक्रवार से खोला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।